نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. الحمد لله، آج ہم سب کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا مسلسل شکر ادا کریں. شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بعض دفعہ نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس لیے شکر نہیں کرنا آتا کہ ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ وہ ایک نعمت ہے. ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. اتنی ساری نعمتیں ہیں، کیوں ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے، بچپن سے، جب سے آنکھ کھولی ہے، ان نعمتوں میں پلے بڑھے ہیں. لہٰذا اب ہمارے لیے وہ نعمت نہیں بلکہ ایک معمول زندگی ہے، نارمل لائف کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، نعمتوں کو پہچانیں، ان کی قدر کریں. آج کے دن انشاءاللہ آپ ایک ایک نعمت کے اوپر اپنے رب سے بول کے شکر ادا کریں گے تاکہ اور زیادہ احساس جاگے. کئی دفعہ لیکچرز میں، کئی دفعہ کسی جگہ پہ آپ سے پوچھا جائے تو ایک روایتی سے ہمارے جواب ہوتے ہیں، یہ چیز نعمت ہے، یہ چیز نعمت ہے، یہ چیز نعمت ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کہتے تو ہیں لیکن ایک دفعہ بول کے اپنے اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد دی، اس نعمت پہ تیرا شکر ہے. اللہ تو نے مجھے گھر دیا. واقعی اس چیز کو فیل کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. لاکھوں بے گھر لوگ ہیں اس ملک میں بھی، ہوم لیس لوگ ہیں جو بریجز کے نیچے فٹ پاتھوں پہ رات گزارتے ہیں. اللہ تو نے میرے اعضاء کو سلامت رکھا، اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی ہے. تو نعمتوں کو بول بول کے ان پر اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سامنے شکر گزاری کیجئے اور ان کی قدر کرنا جانے. الحمدللہ آپ سب کوششیں کر رہے ہیں اور روزے میں یہی سب کی کوشش ہے کہ ہمارا روزہ خاص الخاص بن جائے. تو آپ لوگوں نے کل کوشش کی تھی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ شام تک بات ہی بھول جاتی ہے کہ صبح کیا بات ہوئی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لکھ لیں تاکہ سامنے ہوگا آپ کے تو یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، صرف وہی ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کے لیے مگر اتنا ہی جتنی کہ وہ کوشش کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوششوں کے مطابق ہی ہمیں وہاں پہ بدلہ ملے گا. کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی ایسا معجزہ ہو کے وہاں پہ ایک دم ہمارا اعمال نامے میں کچھ بڑھ نہیں جائے گا، جو ہم نے کوشش کی ہوگی اسی کے مطابق اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتا، سورہ اللیل میں، کہ تمہاری سب کی کوششیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں. کوئی زیادہ کوشش کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، اتنا بھی کافی ہے جتنا میں کر رہی ہوں، آخر اتنا کچھ تو کر رہی ہوں. تو کوئی اپنی تھوڑی کوشش پہ بھی مطمئن ہے اور کوئی دوڑ دوڑ کے زیادہ زیادہ اور اس سے زیادہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. ظاہر ہے سب کی کوششیں مختلف ہیں تو سب کا اجر بھی مختلف ہوگا، تھوڑی ایک جیسا سب روزے داروں کو اجر مل جائے گا. بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا اجر مختلف ہوتا ہے کیونکہ سب کی کوششیں مختلف ہیں. تو آپ سب میں سے ہوشیار انسان وہی ہے جو اپنی جان کو खर्च कर दे, कोशिश में लगा रहे, और वो कोशिशें करें जिससे वो दोजख से बच जाए और जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। इंसान को एक ही जान मिली है ना, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही अमल का मौका है, वन चांस है ओनली। तो अब चाहिए कि अपनी जान को उस सौदे को खरीदने में लगाए जिससे हमेशा का फायदा हो सके। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स सुबह को जाता है तो कोई अपने नफ्स को बेच के आज़ाद कर लेता है और कोई उसको हलाक कर देता है। हमने सबने सुबह किया ना आज, अब हमारे नफ्स हम फॉर सेल लगा देंगे और कोई आज़ाद करा लेगा और कोई हलाक कर लेगा। क्या मतलब है? यानी दुनिया मैदान अमल है ना, इसमें आप अपनी जान को लगाते हैं, खपाते हैं, हर एक कोशिशें कर रहे हैं। कोई देखें, काफिर भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, कई और मुसलमान भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, हर एक की कोशिशें डिफरेंट है ना। तो हर एक कहीं ना कहीं अपनी जान को खपा रहा है, मगर कोई है जो जन्नत पा लेगा और जहन्नम से आज़ादी पा लेगा, और कोई है जिसको कोई फिक्र नहीं होगी, वो जहन्नुम का ही सौदा करेगा, जहन्नुम खरीद लेगा। तो दो तरह के इंसान हैं, एक खुद को हलाक कर लेंगे, दूसरे आज़ाद कर लेंगे। तो बाज़ मेहनत करके, कोशिश करके अल्लाह की रज़ा पा लेते हैं, और दूसरे भी हाथ पैर मारते हैं, मगर सिर्फ इस फना होने वाली दुनिया के लिए मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। किसी बुज़ुर्ग का कॉल है, फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी जानों की कीमत बना दिया, लिहाजा तुम जन्नत के अलावा और किसी चीज़ के बदले में इसे ना बेचो। जन्नत के लिए अपनी जानों को लगाएं, और लगा लगा के थके नहीं, ये सोच लें कि ये एक महीना है जिसमें मैंने खूब मेहनत करनी है। मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे के बराबर भी आपने नेकी की होगी ना, उसको भी पा लेंगे वहाँ पे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो भी इंसान आगे भेजता है खैर में से, उसको अल्लाह के यहाँ पा लेगा, वो वहाँ पे मिल जाएगा, कहीं नहीं जाता। तो इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए इंशाअल्लाह ताला कोशिश भरपूर करनी है, अपनी जान को लगाएं, उसके बाद उम्मीद रखें अल्लाह ताला से अच्छी, सिर्फ खाली अली उम्मीदें नहीं। वाकई जब आपने कुछ किया होगा तो उम्मीद रख भी सकते हैं, जिस बंदे ने कुछ किया ही ना हो फिर क्या उम्मीद रखनी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में आपको मैं सहाबा कराम के कुछ अखलाकियात भी बताऊंगी कि इनके अखलाक कैसे हुआ करते थे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अखलाक को जानते हैं, मगर सहाबा कराम जो आम इंसान थे, वो आपकी तरबियत में रह के कैसे हो गए, कैसे खर्च करने वाले थे, कैसे माफ़ करने वाले थे, कैसे वो सब्र करने वाले हुआ करते थे, कैसे अपने आप पे कंट्रोल करने वाले थे, अपनी ज़ुबानों का कैसे एहतियात से इस्तेमाल करते थे, ताकि हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकें। तो उस दिन से चूंकि ये बात हो रही है सदक़े के ऊपर, आपको थोड़ी सी बताऊंगी कि सहाबा कराम कितने गरीबों का और नादारों का ख्याल करने वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर किसी मिस्कीन की शिरकत के बगैर खाना नहीं खाया करते थे। इनके सामने जब भी दस्तरखान पे खाना चुना जाता तो किसी का भी गुजर होता तो इनके अहले खाना उसको शरीक कर लेते खाने में, किसी मुअज्जज़ इंसान का अगर गुजर होता, रिस्पेक्टेबल पर्सन का, लेकिन वो खुद नहीं बुलाते थे। जब कोई मिस्कीन सामने से गुजरता तो उसको ज़रूर बुला लेते थे, कहते थे ये लोग उसको बुलाते हैं जिसको खाने की ख्वाहिश नहीं है, और उसको छोड़ देते हैं जिसको खाने की ख्वाहिश है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम करते हैं, जो खाने खा खा के ना कदरा हुआ होता है, हम उसको बार बार बुलाते हैं खाने पे, और जिनको खाने की ख्वाहिश है उनको भूल ही जाते हैं। तो उनके घर वाले बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोग जो मुअज्ज़ज़ लोग थे, जब वो गुजरते थे तो उनको इनवाइट किया करते थे, और ये मिसकीनों को इनवाइट करते थे। एक दफ़ा इनको मछली खाने की ख्वाहिश हुई, इनकी बीवी ने बड़े एहतमाम से बड़ी मज़ेदार मछली तैयार की, अभी दस्तरखान पे रखी ही थी कि कानों में एक मिसकीन की सदा आई, फरमाया इसको दे दो। बीवी ने बहुत इसरार किया कि नहीं, आपके लिए बनाई है, उसको कुछ और दे देंगे, लेकिन वो इसी पे इसरार करते रहे, नहीं इसको यही दो। एक दफ़ा लोगों ने इनकी बीवी को मलामत की कि तुम अच्छी तरह इनकी खिदमत नहीं करती। बोली क्या करूं, इनके लिए जब खाना तैयार किया जाता है किसी मिस्कीन को ज़रूर शरीक कर लेते हैं खाने में। तो उन्होंने क्या किया कि जो फुकरा मिसाकीन थे रास्ते में बैठते थे उनसे कहला भेजा, उनको कह दिया कि अब इनके रास्ते में ना बैठा करो वरना किसी ना किसी को उठा के ले आएंगे। तो वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो उन लोगों को घरों से बुलवा भेजा। इनकी बीवी ने उनको कह दिया हुआ था कि जब वो घरों से भी बुलाएं तो तब भी ना आना, तुम लोगों ने नहीं आना। तो वो लोग नहीं आए तो उस रात को खाना ही नहीं खाया। सुभान अल्लाह, ऐसे वो लोग शरीक किया करते थे अपने खाने में। इसी तरह हज़रत हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंधे हो गए थे, तो अपने मुसल्ले से दरवाजे तक एक धागा बांध रखा था, जब कोई मिस्कीन आता तो टोकरी से कुछ खजूरें ले लेते और धागे के सहारे से दरवाजे तक आकर उसको दे देते। घर के लोगों ने कहा हम आपका ये काम कर सकते हैं, बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मिस्कीन को देना बुरी जगह पर गिरने से महफूज रखता है, तो मैं इसलिए देता हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं नहीं गिरूँगा। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़े से थी, घर में एक रोटी के सिवा कुछ नहीं था। इस हालत में एक मिस्कीन ने सवाल किया तो उन्होंने लौंडी से कहा कि रोटी जो थी पड़ी हुई वो उसको दे दो। उसने कहा इफ्तार आप किस चीज़ से करेंगी? कहने लगी दे तो दो, शाम हुई तो किसी ने बकरी का गोश्त भेज दिया। लौंडी को बुला के कहा लेखा ये तेरी रोटी से बेहतर है। तो अगर इंसान वाकई ये यकीन रखे ना कि अगर मैं दूंगी मुझे इससे बेहतर मिलेगा तो देना मुश्किल नहीं रहेगा अपने खाने पीने में। आजकल के दिनों में ख़ास तौर पे ज़रूर किसी को खाना खिलाएं और ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल करें जिनको खाने की ख्वाहिश है, बार बार उन्हीं को खिलाते जाना, जिनको ख्वाहिश नहीं है ये भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप ना खिलाएं, ज़रूर खिलाइए, लेकिन ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिनको ख्वाहिश है, जो मुफलिस है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जब आप किसी को सदका करते हैं किसी पे, तो ये जहन्नुम के अजाब से भी बचाता है, और इसके अलावा दुनिया की मुसीबत से भी इंसान को महफूज रखता है। तो मुसीबत आ जाए फिर हम सदका देने के लिए तो भागते हैं, मुसीबत आने से पहले ही सदका दें। इसके बारे में एक हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसीबत के आने से पहले सदका करने में जल्दी करो, क्योंकि मुसीबत उसको फांद के नहीं आ सकती, उसको फलांग के उसके ऊपर से उसको स्किप करके नहीं आ सकती, मुसीबत रुक जाती है। तो आज एक सदका बॉक्स बना लें अपने घर में जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ डाल दें, कोई नोट नहीं है तो कॉइन्स ही डाल दें, कुछ चेंज आपका पड़ा हुआ है घर में तो वही डाल दें, लेकिन डालें ज़रूर। और बच्चों को भी आदत डालें कि वो उसमें कुछ ना कुछ डालते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला एट द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान ओवर होने से पहले इंशाअल्लाह उसको सदका कर दें, किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को, किसी को भी दे दें। अल्लाह हमें ऊपर वाला हाथ दे, नीचे वाला हाथ कभी ना दे, हम देने वाले रहें। बाज दफा लोग ये बात कहते हैं, अब हम ही देते जाएं, मेरा ही काम है देना, कभी दूसरे भी दिया करें। ये कहने से बेहतर है कि आप इस पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, लेने वाला नहीं बनाया। मैं दूसरे एंड पे भी हो सकती थी, मेरा हाथ नीचे वाला हाथ भी हो सकता था, लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ऊपर वाला हाथ दिया है। मेरे मेरे माल से बहुत से लोगों का फायदा हो रहा है, मेरा माल मेरे लिए ही नहीं और बहुत से लोगों के लिए है। तो इंसान को बड़ा इत्मीनान होता है, और माल की जो मोहब्बत है वो भी कम होती है ऐसे। और अल्लाह का वादा है कभी भी माल कम नहीं होगा अल्लाह के रास्ते में देने से। और मैंने आपको बताया भी था, जो किसी को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको वहाँ के खाने खिलाएगा। अच्छा, आप लोगों ने अपनी नमाज़ें बेहतर की, वो वसवास का जो प्रॉब्लम था कुछ बेहतर हुआ। देखिए, नमाज में इंशाल्लाह ताला हम इसका तर्जुमा भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब आप इंशाल्लाह शुरू में नमाज के कंसंट्रेशन करेंगे ना, कि दिल हाजिर कर लेंगे, उसके बाद कहीं और भी ध्यान जाता है तो अलग बात है, लेकिन शुरू में कम से कम जब आप नमाज स्टार्ट करें दिल हाजिर रहे, जो फिर कैफियत गालिब रहेगी ना दिल पे, जो ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हाँ वही पहुँचती है। अगर ज़्यादा नमाज में ज़्यादा देर आप गाफिल रहे तो ज़ाहिर है वो नमाज ऊपर क्या चढ़ेगी, क्या वो जाएगी अल्लाह के पास। तो नमाज का तो वही हिस्सा ऊपर चढ़ता है जो दिल की कैफियत होती है, ठीक है? तो दिल की कैफियत एटलीस्ट स्टार्ट में आप सही रखें, ताकि इंशाल्लाह आगे भी जाके नमाज में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें तो बेहतर होती जाए। क्योंकि देखिए, जो जिसमें इंसान का दिल हाजिर नहीं है ना, वो नमाज ऐसे ही है जैसे जिसम से जान निकाल दी जाए। और जिसम से जान निकाल दी जाएगी तो क्या रहेगा, क्या वैल्यू होगी उस जिसम की, उसको आप क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं ना। तो मुर्दा जिसम तो किसी के भी काम का नहीं रहता, इसी तरह मुर्दा नमाज भी बेकार है, वो डेड है, वो आपको नहीं बचा सकती, उसकी सोचें क्या वैल्यू होगी ना माया माल में, और क्या वजन उसका होगा, और क्या अजर मिलेगा उसका कयामत के दिन, और वो क्या हमारी सिफारिश कर सकेगी, वो तो है ही डेड। तो नमाज में एक अटेंडेंस आपके जिस्म की होती है और एक अटेंडेंस आपके जहन की है, आपके दिल की है। जिस्मानी तौर पे तो हम सारे अटेंडेंस लगा लेते हैं जिस्म की है, मगर दूसरी अटेंडेंस जो दिल की हाजिरी की है, उसमें पता नहीं हमारी प्रेजेंट लगती भी है कि नहीं। क्योंकि हम प्रेजेंट होंगे तो प्रेजेंट लगेगी ना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे, जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो खुशू की वजह से ऐसे लगता था जैसे कोई लकड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल बेहिसो हरकत। सज्दा करते थे तो इतना लंबा सज्दा होता था, एक तो लंबा होता था और ऊपर से सज्दे में इतना सुकून वाला सज्दा होता था, बिल्कुल हरकत नहीं होती थी, कि इनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाया करते थे, चिड़ियां बैठ जाती थी, वो समझती थी कोई पत्थर है शायद पड़ा हुआ। तो एक दफा मुस्लिम बिन यसार को देखा गया नमाज में, मस्जिद का एक हिस्सा गिर पड़ा, उसके गिरने से बाजार वाले घबरा गए, लेकिन वो नमाज में खड़े रहे। तो नमाज में कंसंट्रेशन जरूरी है यार, उस पाए की तो नमाज क्या। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो अभी तो फिलहाल के लिए ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे नमाज के माने पे गौर हो कि मैं क्या बोल रही हूँ मुंह से, ऐसे ही नहीं हो। तो जब आप अल्लाह अकबर करें तो सारी दुनिया पीछे हो जाए और सिर्फ अल्लाह आगे हो। जो आप बोल रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो एक चीज़ होनी चाहिए। अगर जुबान कुछ बोल रही है और आपके दिल में बातें कुछ और चल रही हैं, तो फिर तो ये खुशू ना हुआ ना, फिर तो दिल हाजिर ही नहीं है ना। अब इसके अंदर आप देखें, जितना ही आपकी बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, जितनी इसकी इसकी रूट्स डीप हो चुकी हैं, उतनी ताकतवर दवा आपको चाहिए। अगर आप इसमें बहुत पक्के हो गए तो जाहिर सी बात है इसको सही करने में भी टाइम लगेगा। तो नमाज में हाल यही रहता है कि अगर कोई ख्याल आए भी तो ख्याल अपनी तरफ खींचेगा, आपने नमाज की तरफ खींचना है। ख्याल आपको उधर लेकर जाएगा कहीं और, नमाज से बाहर, आप वापस अपने जहन को नमाज में लाएंगे। इसी कश्मकश में नमाज ख़त्म हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं उलमा, जैसे कोई शख्स दरख्त के नीचे बैठा हो और किसी मामले पे गौर कर रहा हो और चिड़ियों की आवाज़ें उसको परेशान कर रही हों, तो उसके हाथ में जो लकड़ी होगी उससे वो चिड़ियों को उड़ाए। अभी वो अपनी, जब चिड़ियाँ उड़ गई, अभी बैठा ही है, अभी दोबारा सोच में पड़ा है कि चिड़ियाँ फिर आके दरख्त पे बैठ जाती हैं, फिर वो उनको उड़ाता है, फिर आके बैठता है। अभी सोच में जाने ही लगा तो चिड़ियाँ फिर आ गई हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो आपको भी इसी तरह इन वसवास से लड़ते रहना है, एक दिन में नहीं ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको जैसे बताया था, इसकी तैयारी जो है ना कि हमें वसवास ना आए, ये इससे हम निजात पा लें, इस ये वज़ू से ही स्टार्ट हो जाती है। वज़ू में आप बिस्मिल्लाह करके जब कंसंट्रेशन से इंशाल्लाह वज़ू करेंगे तो आपकी नमाज में भी खुशू आ जाएगा। वज़ू का आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो वज़ू है ना, क़यामत के दिन हशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानेंगे हमारे वज़ू के निशानात से। कोई हमारे नाम हमारे माथे पे थोड़ी लिखे होंगे कि ये फातिमा है, ये आयशा है, ये मोहम्मद है, ये अहमद है, थोड़ी फेस पे लिखा होगा। लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे उम्मती हैं, क्योंकि ये वज़ू की जो जगह है, चेहरा हो गया, बाजू हो गए, पैर हो गए, मसा जो किया है, ये सब आज़ा जो हैं ये इतने चमक रहे होंगे, जिसका जितना अच्छा वज़ू होगा उसके उतने ही ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे, दूर से नज़र आ रहे होंगे। अब हमारे वज़ू देख लें कि कैसे हैं, क्या चमकदार होंगे हमारे बॉडी पार्ट्स इससे। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं वज़ू के स्टेप्स बताती जाऊंगी, हर दफ़ा एक एक स्टेप। मैंने आपको पहले बताया था बिस्मिल्लाह पढ़ के और हाथ धोने, फिर उसके बाद आपने मुंह और नाक में पानी डालना है। एक चुल्लू लेके, एक जैसे मुट्ठी सी बनाते हैं, उसमें पानी लेके कुछ मुंह में डाला और कुछ नाक में चढ़ा लिया। उसके बाद आप जो मुंह में पानी है ना उसको घुमाते जाएं, जितनी देर उसको घुमा रहे हैं उतनी देर फिर आप नाक झाड़ेंगे, नाक को अच्छी तरह झाड़ें, क्योंकि वैसे भी सुबह को उठ के तो वैसे ही झाड़नी चाहिए नाक, क्योंकि इसके बांसों में, हदीस में आता है कि इसके बांसों में शैतान रात गुजारता है। तो आपने जब नाक ब्लो कर ली तो उसके बाद आप जो मुंह वाला पानी है वो फेंकेंगे। इतनी हद तक डिटेल आती है वज़ू के बारे में। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आप इस दफ़ा करिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बताऊँगी। और नमाज़ को भी इंशाल्लाह ये सोच के आज पढ़ना है कि ये मेरे लिए वहाँ नूर बनेगी जहाँ कोई नूर नहीं होगा, क्योंकि हदीस में है कि जिसने नमाज की पाबंदी की उसके लिए नमाज कयामत के दिन नूर है और दलील और निजात का सामान होगी। तो इट्स नॉट समथिंग के जो कोई मामूली सी ऐसी चीज़ है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। इसने वहाँ पे अंधेरों में हमारे लिए नूर बनना है, हमारी लाइट होगी, इसलिए इसको हमने अच्छा करना है। आज जिस सुन्नत पे आप अमल करेंगे, बहुत ही आसान ही सुन्नत है, वो ये कि जब आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम से उठते हैं, अगर आप लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप यहाँ से उठते हैं तो तकरीबन 5-10 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। तो इशराक पढ़ के फिर आप चाहे कुछ काम करना है करें, आपने सोना है सोएं, बर्तन रखने हैं रखें, कुछ किचन का काम करना है, सहरी की सामान पड़ा हुआ है वो सब उससे उसको पूरा करें, तो ये सब चीज़ इसके बाद करें। प्रोग्राम ख़त्म हो तो उसके बाद आप तिलावत करिए या दुआएं पढ़ें सुबह शाम की, उसके बाद फिर आप इंशाअल्लाह ताला इशराक पढ़ेंगे तो इसका अजर आपको कितना मिलेगा? 1,000 उम्रे के बराबर। तो मुफ्त में आपको हज के बराबर, उम्रे के बराबर अजर मिल रहा है, बैठे बैठे, ना कहीं जाना पड़ रहा है, ना कोई एफर्ट करनी पड़ रही, थोड़ी सी बस एफर्ट है। 2 नफल पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ें, 4 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ें, जितने भी पढ़ सकें, चलें 2 से स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, इसमें हमारी हाज़िरी लग जाए। ठीक है, वैसे भी कल बात हुई थी ना कि नवाफिल से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, तो नफल ज़रूर पढ़िए। और शुरुआत दिन की आपने की थी सहरी पे, जब आप उठे तो आपने उस वक़्त नफल अदा किए, फिर अब ये एक और नफल हो गए दिन के, सुन्नत भी पूरी हुई, नफल भी अदा हो गए, हज और उम्रे के बराबर अजर भी मिल गया। छोटा सा अमल है, लेकिन देखिए रिवॉर्ड्स कितने बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो जिक्र है वो है सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह के बारे में आता है, जो आदमी सुबह शाम 100 दफा ये पढ़ता है तो वो ऐसे ही है जैसे 100 हज किए हैं। तो 100 हज कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? इतना तो ज़िंदगी में 100 साल मिले तो हर साल करता रहे जब से पैदा हुआ है, इतना तो कोई कर ही नहीं सकता। कितना बड़ा अजर है इसका ना, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी जो पढ़ेगा 100 दफ़ा तो ऐसे ही है जैसे इसने 100 दफ़ा घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में, मुजाहिदीन को सवार किया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, उसने 100 घोड़े डोनेट कर दिए, समझ लें अल्लाह की राह में। यहाँ फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसने 100 दफ़ा जिहाद किया तो एक घोड़ा, एक गाड़ी अल्लाह के रास्ते में देना मुश्किल है, तो 100 घोड़े समझ लें जैसे 100 गाड़ियाँ आपने दे दी। कितना मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा कहने से इतना अजर मिल जाता है। तो ये मामूली चीज़ें नहीं, बड़ी कीमती चीज़ें हैं। वैसे भी देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, आज हमने जब नेमतों का शुक्र अदा करना है तो एक तो हमने बोल के कहना है, अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये चीज़ दी है। ठीक है, बोल के, मुंह से बोलिएगा अल्फाज के साथ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, ये तराजू को भर देगा। कौन सा तराजू? यहाँ पे तो हमें नहीं कोई तराजू नज़र आ रहा, अभी नहीं नज़र आएगा, कयामत के दिन जो तराजू लगेगी ना, मीज़ान, सारी मीज़ान को भर देगा ये एक अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह ये दोनों मिल के आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर देते हैं। अब देखें ये अमाल हमें शायद अभी आपको लग रहे हो कि ये कैसी बातें, भर देते हैं और अमाल वो तराजू भर जाती है, तो यहाँ पे चूंकि हमें नज़र नहीं ना आती इनकी शेप्स, तो इसलिए हमें पता नहीं ये बात समझ नहीं शायद आ सके, मगर क़यामत में इनकी शक्लें भी होंगी और इनके वज़न भी होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, शक्ल भी होगी, वज़न भी होगा, तो ये इतने वज़नी हो जाएंगे वहाँ। आज की दुआ है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे जमा दे। या मुसर्रिफ़ल कुलूब सर्रिफ़ कल्बी अला तौआतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत पे जमा दे। तो ये दीन पे जमने के लिए बहुत अच्छी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीने की ज़रूर पढ़ा करते थे। मसनून दुआ है, आपको मसनून दुआओं की किताबें भी मिल जाएगी, और बहुत प्यारी दुआ है, दीन पे साबित कदमी के लिए, जमने के लिए ये दुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान हमेशा इस चीज़ से केयरफुल रहे कि कोई पता नहीं है, कभी ये दिल जो होता है ना इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, आज दिल की हालत कुछ है, कल को ऐसे बहके, ये अल्लाह ताला माफ़ करे कि हमारे सामने मिसालें हैं कि लोगों के कदम ऐसे फिसले, क्या थे और क्या बन गए फिर। तो ये दिल की तो एक हालत रहती ही नहीं है ना। आज तो बड़ा इताअत का शौक है, कल को पता नहीं इसका क्या हाल हो। आज बड़ी अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, कल को अल्लाह ही बेहतर जानता है किस हालत में हो। तो या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, अल्लाह इसको साबित रखना, जमा के रखना अपने दीन पे और अपनी इताअत पे। डावा डोल ना रहे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, ये ना होता रहे, अल्लाह जमा दे। तो बहुत दिल से ये दुआ मांगिएगा। ये एक नसीहत आप लोगों को करना चाहती हूँ कि अपने भी वक्त का ख्याल रखिए इस रमज़ान में, और दूसरों के वक्त का भी। मसलन है कि लंबे फ़ोन हो गए, टेक्स्टिंग हो गई, चैटिंग हो गई, ये चीज़ें देखें आपका भी वक्त ज़ाया करेंगी और आप दूसरे का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप हाफ़ एन आवर की, आधे घंटे की कॉल किसी को करते हैं, आप ज़रूर कॉल करें किसी को, मगर ज़रूरत के लिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही बात पे बात आगे बढ़ाए चले जाना। सोचिए अगर आप आधे घंटे की कॉल किसी को करते हैं, तो आपने अपने वक्त का तो आपको कोई एहसास नहीं है, मगर दूसरा इस आधे घंटे में आधा पारा पढ़ सकता था, उस आधे घंटे में वो आराम कर सकता था कि ताज़ा दम हो जाए, लेकिन आपने उसको एक नेकी के काम से रोक दिया और बातों में उलझाए रखा। तो अपने वक्त की कदर जानिए, ये वक्त वापस नहीं मिलना। ना अपना वक्त ज़ाया करें ना दूसरे का। पता है आप किसी का कितना बड़ा नुकसान करते हैं जब आप किसी का वक्त ज़ाया करते हैं, क्योंकि आप उससे वो चीज़ छीन रहे हैं जो कि कभी वापस नहीं मिल सकती। माल मिल सकता है, वक्त नहीं वापस मिल सकता। आपने जब दूसरे का वक्त ज़ाया किया एक के बाद एक बात करके और गैर ज़रूरी बातें करके, और देखें ये भी एक आर्ट होता है टू द पॉइंट बात करने का। टू द पॉइंट बात करना सीखिए। लंबी लंबी कहानियाँ, लंबी लंबी बातें, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो, ये बेकार होती हैं। इससे आपका भी वक्त ज़ाया होगा और दूसरे का भी। ज़रूरी बात करें, टू द पॉइंट बात करें, और लोगों को नेकी के कामों से प्लीज़ रोकने वाले ना बने। ये रोकना ही है नेकी के काम से, जब आप दूसरे का इतना वक्त ले लेंगे, आपने इतना नुकसान कर दिया उसका। तो इस चीज़ में बहुत केयरफुल रही है। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखने की मशक कराएं, एक्सरसाइज कराएं। सहाबियात सुबहान अल्लाह ऐसी हुआ करती थी, और खैर वो बच्चे भी, उनके अंदर भी दीनी जज्बा होता था, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते थे, तो कहा जाता है कि सहाबियात अपने बच्चों को रोज़ा रखवाती थी। जब वो भूख की वजह से रोने लगते थे तो रुई की गाले के खिलौने बना के वे ना उनको बहलाया करती थी कि इनको ज़रा किसी और तरफ लगा दें, और इफ्तार के वक्त तक इसी तरह उनको खेल में लगाए रखती थी। ये बुखारी की हदीस है। और बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि माएँ दूध पीते बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, दूध भी उस वक़्त पिल दिया करती थी जब इफ्तार का वक्त हो। हाँ आप ये देख लें, अगर आपका बच्चा छोटा है, जितना वो तहम्मुल कर सकता है, जितने भी उसका सब्र का लेवल है, या जैसी उसकी एज है, मतलब 4 साल का है, 5 साल का, जिस तरह की भी उसकी एज है, उसके मुताबिक उसको छोटा सा रोज़ा रखवा दें, छोटा कर दें रोज़े को, एक अज़ान से दूसरी अज़ान तक करवा दें, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा है, जोहर से असर तक करा लें, लेकिन रोज़ा रखवाएं ज़रूर, उनको बताएं, उनको पता होना चाहिए रोज़े हैं। तो सुभान अल्लाह वो लोग ऐसे अपने बच्चों को ट्रेन किया करते थे। तो इंशाल्लाह अगर हम चाहते ना कि हमारे बच्चों में अच्छी आदतें पैदा हों, तो उनको भी इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं, और बचपन से ही ये इंट्रोडक्शन हो जाए। हज़रत उमर के ज़माने खिलावत में एक शख्स पकड़ा गया था ना, तो उसने रमज़ान में शराब पी रखी थी, रोज़े से नहीं था। हज़रत उमर ने उस वक्त इरशाद फरमाया था कि तेरा नास हो, हमारे तो बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, यानी तू नहीं रोज़ा रखता, हमारे तो बच्चे, बच्चा हमारा रोज़ा रखता है। तो इंशाल्लाह मोहब्बत का तकाजा है, ये नहीं है कि हम बच्चों को खिलाते जाएं और खिलाते जाएं और ये इसमें हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत ये है कि हम रमज़ान में उनको भी रोज़ों से इंट्रोड्यूस करें। इंशाल्लाह तआला आज एक ऐसी औरत की बात आपके सामने रखूंगी, थोड़ा सा उनका जिक्र, हम ख़वातीन हैं तो थोड़ा सा शायद इस बात से हमें फ़ायदा हो। एक ऐसी औरत जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द तो बहुत से कामिल हुए हैं, मर्द से वो तो बहुत सारे मर्द हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, और वो लेकिन औरतों में चार औरतें ऐसी हैं जो तमाम औरतों से ज़्यादा यानी बेस्ट औरतें हैं, और उनमें सबसे अफजल हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दो का जिक्र आता है, और इसके अलावा हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फातिमा का भी जिक्र आता है। तो ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो औरत है सबसे पहले जो इस्लाम लेकर आई, यानी इस बात पे भी औरत होने के नाते हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आई वो एक औरत ही तो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई मर्द नहीं सबसे पहले इस्लाम लाया था, औरत लाई थी। और ये वो खातून हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की बल्कि आखिरी उम्र तक सबसे ज़्यादा बड़ी मददगार बनी रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी और आपने फरमाया था जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझ पे कंबल डाल दो, मुझ पे कंबल डाल दो, वो इतनी ज़्यादा शदीद घबराहट थी, और ये फरमा रहे थे कि मुझे डर है कि मेरी जान ना निकल जाए, उस वक़्त बीवी के जो अल्फाज थे वो हदीस की किताबों में आते हैं, एक वफा शार बीवी कैसी होती है, फरमाती हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको कभी जलील और रुसवा नहीं करेगा, आप परेशान ना हो, आप तो सिला रहमी करते, आप लोगों की मदद करते, आप कुंबा परवर हैं, बेकसों फ़कीरों के मददगार हैं, मोहताजों का सहारा हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत जदों के काम आते हैं, यानी कितनी सपोर्टिव वाइफ थी। और फिर आपको मालूम है कि इन्होंने अपना तन मन धन सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर कर दिया, अपने शोहर से सच्ची मोहब्बत करने वाली। ज़रा सोचें 1400 साल पहले उनको तो कोई वहाँ पे लेक्चर नहीं देने आता था ना, मक्का के पहाड़ों में अरब के रेगिस्तानों में पलने वाली एक औरत है जहाँ पे कोई मदरसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं, इसके बावजूद इतनी हिकमत थी इनके अंदर, और कितने प्यारे अल्फाज में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। और फिर जब शेबे अबी तालिब में 3 साल तक यानी मैसूर कर दिया गया मुसलमानों को, तो हालांकि ये रिचेस्ट औरत थी मक्का की, चाहती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलीहदगी लेके और किसी और से शादी कर लेती कि भाई मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है इन मुसीबतों को झेलने की, मैं तो अच्छी मुश्किल में आ गई, नहीं, सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया सब्र और अजर की उम्मीद में, कभी ज़ुबान से उफ़ तक नहीं कहा, ना ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तबलीग की वजह से या इस दीन की वजह से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये मुसीबत आई है, अब मैं कैसे सब्र करूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। और ये 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 साल, और ये मैंने जैसे आपको बताया कि रिचेस्ट औरत थी, तो सोचें कितनी लग्जरीज होंगी इनके पास, कितना कुछ, कितना माल होगा इनके पास, कोई गरीब नहीं थी, ऐसे लोग जिनके पास बहुत नेमतें होती हैं उनसे तो अगर नेमतें छिन जाएं या उनके ऊपर मोहताजी है तो उनके लिए तो और भी सहना मुश्किल हो जाता है, आ जाता है इनके पास एक प्याला था वहाँ पे, एक दिन वो भी टूट गया, तो कुछ भी नहीं था इनके पास। इसी तरह उन्होंने भी फाके किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ, तो इनके पास जितना माल था इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया कि सारी उम्र भर की पूंजी, यहाँ पे तो अकाउंट औरत के अलग है मर्द के अलग, और औरत जॉब कर रही है तो अपना अकाउंट अलग रखती है, नहीं भाई ये कैसे मौत को दे दूँ। लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब दे के और फरमाया कि आप जिधर मर्जी खर्च करें दीन के रास्ते में। खैर वो मर्द भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, तो इन्होंने सब लुटा दिया। और ये वो औरत है जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी, जब 5 वक्त नमाज अभी फर्ज नहीं हुई थी। और उस वक़्त ये इब्ने कसीर में है कि जब नमाज फ़र्ज़ भी हुई तब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अपनी एड़ी मार के जिसे चश्मा उबल पड़ा था, फिर दोनों ने इसे वज़ू किया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वज़ू और नमाज का तरीका सीख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ के इस चश्मे पर ले गए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरह उनके सामने वज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज पढ़ा करते थे। तो जो सही तरीका, जो नमाज का जो आजराई तरीका है, सबसे पहले इन्होंने पढ़ी थी। और आपको पता है कि जब शेबे अबी तालिब में थी तो इतनी तकलीफ़ें जो बर्दाश्त की, तो इनकी सेहत फिर दिन ब दिन ख़राब होती गई। फिर उसके बाद जब ये इनकी उसके बाद वफ़ात भी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन थे। उनकी एक ऐसी बीवी जो बीवी नहीं थी सिर्फ साथी थी, हर खुशी गम में उसका साथ छूट गया था। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद करने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था आके पहली वही के बाद कि कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मुझ पे ईमान लाएगा, हतीजा मैं किसको कहूँ, तो फरमाया मैं आपके ऊपर ईमान लाती हूँ। सबसे पहले ईमान लेकर आई, एक बात भी नहीं सोची। ये खातूनें जन्नत हैं। इन्होंने कभी यानी जाहिलियत के ज़माने में भी शिर्क नहीं किया था और सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई थी, यानी हमेशा से दौलत में खेलती रही। तो इसीलिए ये वो औरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहने लगे या रसूलल्लाह खतीजा आ रही हैं और आपके लिए एक बर्तन में खाने की कोई चीज़ ला रही हैं। जब वो आपके पास आए तो उनसे कहिएगा कि उनका रब उनको सलाम कहता है और जिब्राइल उनको सलाम कहता है और उन्हें जन्नत में मोतियों के आलीशान महल की खुशखबरी सुना दे जिसमें ना शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। ये वो औरत है जिनको अल्लाह की तरफ से सलाम मिला, सुभान अल्लाह। तो इनकी अगर आप लाइफ पढ़ें तो क्या चीज़ है इनकी लाइफ के अंदर, आपको क्या नज़र आता है? आप ये नहीं कोई ये कोई टीचर थी या कोई कोई आलिमा थी, कोई किसी को पढ़ाती थी, कोई इस वजह से इनके दर्जे बड़े बुलंद हैं। असल बात ये है कि ये वो थी जो साबिकून अल अव्वलून में से थी, सबसे पहले आगे बढ़ने वाली। जो सबसे पहले आगे बढ़ता है ना, सबसे पहले लब्बैक कहता है, कदम बढ़ाता है, उसका दर्जा भी उसके मुताबिक उतना ही ऊंचा होता है। जब सारे ही करना शुरू हो जाए फिर कोई कर ले तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात ना ना रही, भेड़ चाल है, सभी कर रहे हैं, आजकल फैशन ही बन गया है, सब हो रहा है, तो फिर तो आपने भी कर लिया तो क्या बड़ी बात हुई। पर जब कोई भी ना हो, जब कोई साथ देने वाला ना, उस वक्त अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाना, उस पर अमल करना, उस पर चलना किसी की परवाह किए बगैर, और उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए उनको खुशी से बर्दाश्त कर लेना और उफ तक ना करना, शिकवा शिकायत ना करना, ये ना कहना दीन की वजह से तो हम मुसीबत में ही पड़ गए, अच्छा हमने दीन लिया, ये ना कहना। ऐसे लोगों के फिर दर्जे देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। जब ये फौत भी हो गई थी, हालांकि जो बीवी फौत हो जाए तो कहाँ कोई मर्द उसको याद करेगा, लेकिन ये फौत हो गई थी तब भी इनकी बहन हाला एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई, तो उन्होंने अंदर आने की इजाज़त चाही। इनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से मिलती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में उनकी आवाज़ पड़ी थी, तो हज़रत खदीजा याद आ गई। आपने फरमाया हाला होंगी, हाला होंगी। हज़रत आयशा भी मौजूद थी, उनको इतना रश्क आया, कहने लगी आप उनको याद करते हैं जो इतनी बूढ़ी थी और अब जो मर भी चुकी हैं, और अल्लाह ताला ने आपको उनसे अच्छी बीवियाँ दे दी हैं, आप फिर भी उनको याद कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, जब लोगों ने मुझे मेरी तकजीब की थी तो उन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोग काफिर थे तो वो इस्लाम लाए, जब लोग मेरे मददगार नहीं था, मेरे कोई मददगार नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की। देखें फिर इसलिए इनका दर्जा इतना ज़्यादा है। तो इस बात को समझें कि दीन के ऊपर चलने में या दीन के किसी हुक्म को मानने में भी दूसरों का इंतज़ार ना कीजिए, आप पहल करने वाले बन जाएं, आप आगे बढ़ने वाले बन जाएं। कोई भी दीन का हुक्म है, जो भी आपको मुश्किल लगता है या जिसका भी आप सोचते हैं कि ये तो लोग कहेंगे ऐसे और लोग कहेंगे ऐसे और मैं अकेली कैसे करूं, जब सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे, कोई भी नहीं करता हम क्यों करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए जो हमारे कयाम है, सियाम है, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला इस महीने को हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.